नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। ट्विटर के शेयरधारकों की बुधवार को हुई नियमित बैठक में उद्योगपति एलन मस्क के इस कंपनी को खरीदने के 44 अरब डॉलर के सौदे को लेकर मतदान नहीं हुआ। ट्विटर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पराग अग्रवाल ने बैठक शुरू होने पर कहा कि ट्विटर को खरीदने के प्रस्ताव संबंधी सवालों के जवाब अधिकारी नहीं देंगे। ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक होने के नाते मस्क भी इस बैठक में आ सकते थे, लेकिन वह इसमें शामिल नहीं हुए। यह भी नहीं बताया गया कि सौदे को लेकर शेयरधारक मतदान कब करेंगे। टेस्ला के मुख्य कार्यपालक अधिकारी CEO एलन मस्क ने हाल ही में कहा था कि ट्विटर को खरीदने का उनका सौदा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि कंपनी सार्वजनिक रूप से इस बात के सबूत नहीं दिखाती कि उसके मंच पर फर्जी या स्पैम खाते 5% से कम हैं। घरेलू शेयर बाजार में सकारात्मक रुख और विदेशों में अमेरिकी मुद्रा के कमजोर होने से रुपये को बल मिला और बृहस्पतिवार को रुपया शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 77.52 पर पहुंच गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि विदेशी कोषों की निरंतर निकासी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी ने रुपये की बढ़त को सीमित कर दिया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 77.54 पर कमजोर खुला और आगे बढ़त दर्ज करते हुए 77.52 के भाव पर आ गया, जो पिछले बंद के मुकाबले 3 पैसे की तेजी दर्शाता है। शुरुआती कारोबार में रुपया 77.52 से 77.55 के दायरे में कारोबार कर रहा था। रुपया पिछले सत्र में अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 77.55 के स्तर पर बंद हुआ था। इस बीच 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.04% की गिरावट के साथ 102.01 पर आ गया। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.51% बढ़कर $114.61 प्रति बैरल के भाव पर था। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख और HDFC तथा ICICI बैंक जैसे शेयर के लाभ में जाने से बृहस्पतिवार को शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स 353 अंक चढ़ गया। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 353.1 अंक चढ़कर 54,102.36 अंक पर पहुंच गया, जबकि व्यापक NSE निफ्टी 104.1 अंक बढ़कर 16,129.90 अंक पर था। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में टेक महिंद्रा, नेस्ले, HDFC बैंक, HDFC, ICICI बैंक और TCS बढ़त वाले शेयरों में शामिल थे। दूसरी ओर एशियन पेंट्स, मारुति, NTPC, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और M&M लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। पिछले कारोबारी सत्र में बुधवार को सेंसेक्स 303.35 अंक यानी 0.56% की गिरावट के साथ 53,739.26 अंक पर आ गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 99.35 अंक यानी 0.62% फिसलकर 16,025.80 अंक पर बंद हुआ था। अन्य एशियाई बाजारों में सियोल, शंघाई और टोक्यो लाभ में कारोबार कर रहे थे। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.35% की बढ़त के साथ $114.47 प्रति बैरल पर आ गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बुधवार को शुद्ध आधार पर 1,803.06 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। अगर आप आज यानी 26 मई से बैंक और पोस्ट ऑफिस में इस वित्त वर्ष के दौरान 20 लाख से अधिक जमा और निकासी करते हैं तो आपको पैन कार्ड व आधार कार्ड देना होगा। केंद्र सरकार ने इस संबंध में 10 मई 2022 को ही अधिसूचना जारी की थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने इनकम टैक्स 15वां संशोधन नियम 2022 के तहत नया नियम बनाया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने इससे पहले एक दिन में 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन पर पैन को अनिवार्य किया था, लेकिन अब डाकघर बैंक और सहकारी बैंकों में जमा और निकासी पर एक साल के दौरान पैन या आधार देना होगा। क्यों लागू किया गया ये नियम? रिपोर्ट बताती है कि ये नियम लागू करने का मकसद उन लोगों को टैक्स के दायरे में लाना है जो ज्यादा रुपयों के ट्रांजैक्शन करते हैं लेकिन उनके पास पैन नंबर नहीं है। इस नियम के आने से टैक्स चोरी जैसी घटनाओं पर ब्रेक लगेगा। नए नियमों के लागू होने से सरकार के लिए मनी सर्कुलेशन का पता लगाना काफी आसान हो जाएगा, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को काफी मदद मिलेगी। वित्त वर्ष के दौरान किसी एक बैंकिंग कंपनी या एक कॉर्पोरेटिव बैंक या किसी एक पोस्ट ऑफिस में या एक से अधिक खाते में नगद 20 लाख रुपए जमा करने पर पैन जरूरी होगा। इसी प्रकार अगर इन जगहों से 20 लाख नगद की निकासी होती है तो भी पैन या आधार देना जरूरी होगा। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस में चालू खाता या कैश क्रेडिट अकाउंट खोलने पर भी दस्तावेज देना होगा। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए GPF कटौती की मंजूरी दे दी है। सरकार ने 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए सामान्य भविष्य निधि GPF की मासिक कटौती शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इससे पहले इन कर्मचारियों के वेतन से कटौती नहीं होती थी। सरकार की ओर से इस संबंध में बुधवार को आधिकारिक बयान भी जारी किया गया। इसके अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन कर्मचारियों के जनरल भविष्य निधि की मंजूरी दी है। जारी हुए प्रस्ताव के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से GPF के सब्सक्रिप्शन की मासिक कटौती लागू की जाएगी और अप्रैल 2022 की कटौती भी मई 2022 के वेतन बिलों से ही की जाएगी। गौरतलब है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पेंशन योजना OPS लागू करने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान गवर्नमेंट सर्वेंट्स जनरल प्रोविडेंट फंड रूल 2021 के प्रावधान लागू करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।